ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितां कृष्णा चैतन्यदेवां श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखानमिताक्ष। नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलवद सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्येव च पैतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरु दीनतारणम्। आराध्यो भगवान ब्रजेशतन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम लं प्रेमापमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मदमिदं तत्रादरो नापरा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृंदावन वासियों का, वृंदावन में आने वाले भक्तों का। श्रीमद् भागवतम इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नित्यम भागवत सेवाया चल रही है, तो इसको आप पांचवा अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और पांचवें अध्याय में जो आज का श्लोक दिया गया है वो है 39, 40 और 41। श्रील प्रभुपाद और सभी आप वैष्णव की कृपा से हम इसके ऊपर जो है आज कुछ प्रयास करेंगे बोलने का। उससे पहले ये जो प्रसंग चल रहा है हिरण्यकश्यपु का, तो ये प्रसंग जो है कब शुरू हुआ है? तो ये प्रसंग शुरू होता है हिरण्यकश्यपु का सप्तम स्कंद में, और सप्तम स्कंद के अंत में आकर के परीक्षित महाराज जो हैं, ये जो है युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो प्रश्न करते हैं नारद मुनि से। क्या प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा उसको हम समराइज कर लेते हैं ताकि फिर हम आज के प्रसंग में थोड़ा। बहुत से लोग, भक्त लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिदिन कथा श्रवण नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो थोड़ा उनके लिए मैं एक थोड़ा समराइज में मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो है वो पूछते हैं नारद मुनि से। क्या पूछते हैं? कहते हैं विद्वेशो दयिते पुत्रे कथमासीन महात्मनि ब्रूहि में भगवान येना प्रहलादस्य अच्युतात्मता। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, पूछते हैं वो नारद मुनि से महाराज युधिष्ठिर के हिरण्यकश्यपु तथा उनके प्रिय पुत्र प्रहलाद के बीच में ऐसी शत्रुता कैसे उत्पन्न हो गई, क्यों पिता और पुत्र जो है एक दूसरे के शत्रु या बैरी हो गए, और प्रहलाद महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त कैसे बन गए। तो ये प्रश्न उठाया है सातवें स्कंद के दूसरे अध्याय, और इस प्रकार से जो है तीसरे अध्याय में आकर के यह बताया गया है कि किस प्रकार हिरण्यकश्यपु, प्रथम अध्याय में ये प्रश्न उठाया गया है, दूसरे अध्याय में आकर के नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार जो है भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के भ्राता हिरण्याक्ष का वध कर दिया है, और भ्राता का वध होने के कारण हिरण्यकश्यपु जो है वो भगवान विष्णु का घोर वैरी हो गया, घोर शत्रु हो गया। तीसरे अध्याय में आकर के बताया गया कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या की है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, और लगभग अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। पूर्ण अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन लगभग कर लिया था उसमें। और चौथे अध्याय में आकर के ये बताया गया कि किस प्रकार से इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद, तीनों लोकों का स्वामी बनने के बाद, किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक को फैला दिया। तो इस प्रकार से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पांचवें अध्याय में हमने प्रवेश किया है, और पांचवें अध्याय में ये बताया गया है कि ये कैसे शत्रु बन गए। तो प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं, चार पुत्र हैं हिरण्यकश्यपु के, ये सबसे छोटे हैं, और इनकी एक बहन भी है, और उसका एक पुत्र भी है। वो पुत्र जो है उसको आप जानते होंगे नाम से, कौन था वो बता सकता आप में से? प्रहलाद का भांजा कौन था, बहन का पुत्र? प्रहलाद की बहन का पुत्र कौन था? प्रहलाद के पिता तो हिरण्यकश्यपु, माता कयाधु, लेकिन बहन का पुत्र कौन था? वो था राहु। प्रहलाद मामा हो गए राहु के, ऐसे कुल में प्रहलाद उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार से तो ये उनका छोटा पुत्र था, और स्वाभाविक रूप से छोटे पुत्र के प्रति जो है स्वाभाविक अधिक प्रेम होता है पिता का। तो उन्होंने शुक्राचार्य को नियुक्त किया है, पुरोहित बना दिया है असुरों का, और शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं शंड और अमर्क, और उनकी पाठशाला में भेजना शुरू कर दिया है। किसको? प्रहलाद को पढ़ने के लिए। तो प्रहलाद जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और इस प्रकार से जो है जब कुछ समय हो गया अध्ययन करते करते, तो एक दिन जो है हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को बड़े प्रेम से बुलाते हैं, और बुला करके उनको अपनी गोद में बिठाते हैं, और गोद में बिठाने के बाद उनसे क्या पूछते हैं तो यहाँ पर उसको हम दोबारा से एक बार चर्चा करेंगे, हालांकि ये प्रसंग आप सब सुन चुके हो। तो यहाँ पर एक दफ़ा बड़े प्रेम से बुलाया है, उसको अपनी गोद में बिठाया है, और पूछा है, एकदा असुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडवा प्रपच्य कथ्यातम वत्स मन्यते साधु यद भवान, के हे जो है मेरे प्यारे पुत्र, तुम जीवन में किस बात को श्रेष्ठतम मानते हो, किसको आप श्रेष्ठ मानते हो? पहला प्रश्न पूछा अपनी गोद में बिठा करके बड़े प्रेम से, और पहली बार पूछा है। पहली बार पूछा और उसका बड़े प्रेम से प्रहलाद महाराज उसका उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? श्री प्रहलाद उवाच, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वा आत्मपादं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरि यद् वनं गतो यद् हरिम आश्रय। तो प्रहलाद महाराज बड़े ही भोलेपन से अपने पिता को देते हैं कि मैं किसको श्रेष्ठ मानता हूँ, जीवन का कौन सा अंश श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि ये जो गृहस्थ लोग हैं और जिनको ये देह प्राप्त है, इनको इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जो अंधकूप के समान है, अंधे कुएं के समान है, उनको वृंदावन चले जाना चाहिए और हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। अब वो तो असुर था, पहले तो बहुत जोर से हंसा, बहुत जोर से हंसा बच्चे की बात पे कि बच्चा कैसी बात कर रहा है, और उसको साथ साथ क्रोध भी आ गया। ये असुरों का स्वभाव होता है, कभी हंसते हैं और कभी क्रोधित हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। हंसते हंसते क्रोधित हो जाएंगे और क्रोधित होते होते हंसते लग जाएंगे। ये असुरों का विशेष स्वभाव होता है। तो इसी प्रकार से वो प्रहलाद को देख रहा है और कभी क्रोध कर रहा है और कभी हंस रहा है, और उसने आकर के जो है अपने जो गुरु पुत्र हैं छंड और अमरक बुला करके कहा, इधर आओ, ये क्या पाठ बकवास पढ़ा दिया है इसको, वृंदावन चले जाओ और हरि का आश्रय लो, जरूर आपके कक्षा में जरूर कोई ऐसा दुर्बुद्धिर बालक आ गया है जिसकी जो मति है वो विष्णु में है, उसने इसका जो है आकर के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। पहली बार ये बात कही, ये नहीं कहा कि आपने क्या पढ़ाया, और कहा कि आपके स्कूल में, आपके गुरुकुल में कोई ऐसा बालक आ गया है जिसका संग पा करके इसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है और इसकी विष्णु में मति हो गई है। तो जाओ, इसको लेकर के जाओ और जाकर के देखो कौन सा ऐसा बालक है, और इसके पूर्ण रूप से इसके ऊपर निगाह रखो। ऐसी दुर्मति ये कहां से लेकर के आ गया है? तो अब शंड और अमरक जो है उसको वापस लेकर के जाते हैं और जाकर के जो है उसको कहते हैं कि भाई ये तुमको कैसे ऐसी तुमने बात कर दी, हमारी बात खराब कर दी अपने पिता के सामने। और उसको बहुत अच्छे से जो है फिर से उसको जो है राजनीति की बातें और जो है अर्थ की बातें और अनेक प्रकार के जो है शास्त्रों की बातें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, और प्रहलाद उनको बोल भी रहा है, गा भी रहा है, लेकिन हृदय से उसको स्वीकार नहीं कर रहा। अब दूसरी बार फिर जो है उसको बुलाया गया है, प्रहलाद को बड़े प्रेम से इस बार जो है बैठते हैं, उसको गोद में बिठा करके उसको सहला रहे हैं, उसको सूंघ रहे हैं, अपने छोटे पुत्र के बालों को सूंघ रहे हैं। बड़ा आँखों से अश्रु धारा बह रही है हिरण्यकश्यपु के, अपने पुत्र को इतना उनके जो है प्रेम प्रकट कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यपु इस बार, पिछली बार तो पूछा था कि क्या तुमको श्रेष्ठ लगा वो बताओ, तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा था तुमको क्या श्रेष्ठ लगा वो बताओ, लेकिन इस बार हिरण्यकश्यपु ऐसी गलती नहीं कर रहा है। हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं कि इस बार जो तुमने पढ़ा है अपने गुरुओं से, उसमें तुमको क्या श्रेष्ठ लगा, बदल दिया बात को। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु कहते हैं, प्रहलाद अनुचिताम तात स्वधीतम किंचित उत्तमम कालेना एतवता आश्युमन अक्षिशत गुरो भवान। तो इसमें ये बताया गया है कि भाई आप वो मेरे को बताओ, इतने काल तक तुमने गुरुओं से अपने जो सुना है वो बताओ। तब बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक जो है वो उच्चारण करते हैं। प्रहलाद महाराज दूसरी बार बुलाया है तो दो श्लोक बोलते हैं, पहली बार बुलाया था तो एक श्लोक बोला प्रहलाद ने, और दूसरी बार में कितने श्लोक बोलेंगे? दो बोलेंगे, और जब तीसरी बार बुलाएंगे तो तीन श्लोक बोलेंगे। जितनी बार बुलाओगे मैं उतने श्लोक बोलूंगा। तो क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, और उसके बाद कहते हैं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश चैन नवलक्षणा क्रियेत भगवती यथा तन्मय धीतम उत्तमम। तो इस प्रकार से ये श्लोक जो है दो श्लोक बोले, और ये श्लोक बोलने जब सुने उन्होंने फिर तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु का क्रोध बहुत बढ़ गया। अब के उसने बालक को उठाया, दूर किया अपने से और बुलाया, गुरु पुत्रों को बुलाया, चंड और अमर को, और उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, निंदित किया। ब्रह्म बंधो, तुम ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र हो, तुमने ये कैसी दुर्बुद्धि डाल दी है मेरे पुत्र के, ये ऐसा नहीं था कदापि, तुमने जरूर इसको कुछ गलत पाठ पढ़ाया है, तुमने जरूर तुम विष्णु से मिले हुए हो। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मणों के पुत्रों के ऊपर चंडमर के ऊपर ऐसा दोषारोपण किया है, तो उस वक्त उन्होंने फिर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। हिरण्यकश्यप महाराज, आप हमारे ऊपर दोष मत लगाइए, ना तो हमारे द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, ना ही हमारे गुरुकुल में किसी और के द्वारा इनको ये पाठ पढ़ाया गया है। ये जो इसके अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ है ये स्वाभाविक रूप से है, किसी ने भी इसको इस प्रकार का ज्ञान दिया नहीं है, किसी ने भी इसको ऐसा ज्ञान नहीं दिया है। और इस प्रकार से जो है जब हिरण्यकश्यप को इन सब बातों को बारे में बता दिया गया, तो उसके बाद में फिर बुलाता है पुत्र को तीसरी बार, और तीसरी बार बुला करके फिर जो है पूछते हैं हिरण्यकश्यप कि भाई जब तुम्हारे को यहाँ से ज्ञान नहीं मिला, किसी शंड और अमरक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अपने गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे को ये बुद्धि कहाँ से आ गई? तब जो है प्रहलाद महाराज तीन श्लोकों में उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? मतिर न कृष्णो परता स्वतो वा मितो भिपद्ये गृहवतानाम अंधात गोविर्विशिताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम नते विदु स्वाद्गतिम हि विष्णु दुराशयाये भय अर्थ मानिना अंधा यथा अंधेन रूपमनियमानास्तेपि शत्रांत्रिम उरुदाम निबद्धा। तो इस प्रकार से नैषां मते तावत् उरु क्रमांग्रिं स्पर्शति अनर्थम अपगमो यदर्थम महीयसां पादरजोभिषेकम निश्चनानां न विनीत यावत्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीन श्लोक जो है बोलते हैं कि किस प्रकार से जो है जब तक महत जो है चरणों का रज न लेकर के लगाया जाए, तब तक जो है आप भगवान के बारे में कुछ समझ नहीं सकते, आपको कृपा नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार से जो है क्रोध बढ़ गया, पारा बढ़ गया है और बिल्कुल अनियंत्रित हो गए। अब अनियंत्रित हो गए, अब वो कहते हैं इसका कोई उपचार नहीं हो सकता, इसको मारो मारो मारो, कैसे भी करके इसको खत्म कर दो। तो ये शत्रुता का भाव जो है ये हो गया है पिता और पुत्र के बीच में। तो उसके बाद में जो है जो श्लोक आपने पढ़े हैं और क्रोध में आकर के, और ये बोला ये बालक मेरे भाई का हत्यारा है और ये एक तो दास की भांति मेरे शत्रु विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है, और ये 5 वर्ष का है और माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है, और इस प्रकार से बहुत उसको जो है प्रताड़ित किया है। और अब आज का जो श्लोक है 39, 40, 41 इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमधीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टपि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो जो 39 और 40 है इस पे प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, तो इसलिए इसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर 41वां श्लोक जो है आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नैरतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वैशूलपाणया तिग्मदष्ट करालस्यास्ताम शमश्रु शिरोरुहा नदंतो भैरवम नादम छिंदी भिंदंती वादिना आसिनम चहानन शूले प्रहलादम सर्व मर्मसु। अनुवाद। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के सारे नौकर राक्षसगण प्रहलाद महाराज के शरीर के कोमल अंगों पर अपने त्रिशूल से वार करने लगे। इन राक्षसों के मुख अत्यंत भयानक थे, दांत तीखे तथा दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे। वे सब अत्यंत भयावने प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, इस तरह चिल्लाकर प्रहलाद महाराज पर जो शांत भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे और सारे राक्षस उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अब आज का जो श्लोक है इसका पाठ करते हैं। परे ब्रह्मणि अनिर्देशे भगवती अखिलात्मनि युक्तात्मनि अफला आसन अपुण्य सेव सत्क्रिया। तो चलते हैं, शब्दार्थ बोल देते हैं। परे परम, ब्रह्मणि ब्रह्म, अनिर्देश इंद्रियों से अदृश्य भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, अखिल आत्मनि सबों के परमात्मा, युक्त आत्मनि जिसका मन लगा था उस प्रहलाद पर, अफला निष्फल व्यर्थ आसन थे अपुण्य से ऐसे व्यक्तियों का जिसके पास पुण्य कर्मों की पूंजी ना हो, इव सदृश सत्क्रिया सत्कर्म। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद के, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार राक्षसों के हथियारों का प्रहलाद महाराज पर कोई प्रकट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दिशाओं से अविचलित रहने वाले भक्त थे और उन पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे जो अनश्वर थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता था और वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा है। एक दफा फिर से इसको समझ लीजिए, श्लोक के अनुवाद को, के जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पुण्य कर्म की जिसके पास कमाई नहीं होती है, वो अगर कोई अच्छा कार्य भी करे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के ऊपर जो हथियारों से प्रहार किया जा रहा था उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान करने में व्यस्त थे। कौन से भगवान का? जो अनश्वर हैं और जिन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, है ना। परमे परे ब्रह्मणि, एक तो पर ब्रह्म है, पहला श्लोक के जो शब्द देख लीजिए, परे ब्रह्मणि अनिर्देशे। अनिर्देशे का मतलब है कि जो इन निर्दियों के इंद्रियों के द्वारा जिनको नहीं देखा जा सकता, और भगवती अखिलात्मनि, और वो जो है पूरे अखिल ब्रह्मांड की आत्मा। युक्त आत्मनि जिसका मन लगा हुआ था, अफला निष्फल और व्यर्थ थे अपुण्य से जिसके व्यक्ति के पास पुण्य कर्मों की पूंजी ना हो, उसी प्रकार ये जो सत्कर्म वो करेगा तो उसको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आप, मैं समझता हूं श्लोक को आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से कोई अभागा व्यक्ति कोई अगर उद्योग करता है, कोई व्यवसाय करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन रिजल्ट जीरो। क्यों? अभागा है, भाग्य में नहीं है, कितना भी कुछ कर ले कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जो है वो भी चला जाए। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। उसी प्रकार से जो राक्षस गण थे, वो जिन हथियारों से प्रहलाद महाराज को क्षति पहुंचा रहे थे, तो उनसे परिणाम निकल के नहीं आ रहा था। इस श्लोक का कहने का अर्थ यह है कि वो परिणाम, रिजल्ट नहीं आ रहा था, कर तो रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जैसे पुण्यवान, अगर किसी का कोई पुण्य ना हो और वो अगर कोई पुण्य कार्य करे तो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, और जिस प्रकार से अगर कोई अभागा व्यक्ति कोई परिश्रम करे, कोई व्यवसाय करे, तो उसको कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसी प्रकार से ये असुरगण जितना उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्ति में पूर्ण रूप से मग्न थे, उनके ध्यान में मग्न थे। 5 वर्ष का बालक, सोचिए जरा, 5 वर्ष का बालक, और जो वर्णन किया गया है कि वो उनका कैसा रूप था, तांबे के जैसे बाल थे, तांबे के जैसे बाल, कैसी उनकी आंखें थी, कैसा उनका था। 5 साल के बच्चे को अगर डॉक्टर के पास ले जाओ तो एक सुई देख करके रोने लग जाता है, अभी सुई लगी नहीं है उसको, और रोने लग जाता है कि मेरे को ये सुई ना लगे। तो क्या स्थिति, क्या प्रहलाद महाराज की स्थिति थी, तो उसके ऊपर जो है ये श्लोक के ऊपर अब प्रभुपाद का तात्पर्य, इसको पढ़ लेते हैं। प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में निरंतर पूर्णतः मग्न थे, फुली एब्जॉर्ब, फुली पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में निरंतर मग्न थे। उनको नहीं पता लग रहा था कि मेरे साथ कोई क्या कर रहा है। नंबर एक बात, जैसा कि कहा गया है, गोविंदम परिरंभिता, गोविंदम परिरंभिता, परिरंभिता का मतलब है आलिंगन। भगवान गोविंद ने अपने भक्त को जो है आलिंगन कर रखा था, पूर्ण रूप से आलिंगन किया हुआ था। प्रहलाद महाराज सदैव ध्यान में लीन रहते थे, अतः उनकी रक्षा गोविंद करते थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता या माता की गोद में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि जब राक्षसों ने प्रहलाद महाराज पर आक्रमण किया तो गोविंद पर भी उनका प्रहार हो गया? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब राक्षसों ने उनके ऊपर प्रहार किया प्रहलाद पे, तो गोविंद पे भी आक्रमण हो गया। क्यों? कि उन्होंने तो उनका आलिंगन कर रखा है। जब आलिंगन कर रखा है तो फिर निश्चित रूप से गोविंद के ऊपर भी प्रहार हो गया। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। असुरों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को चोट पहुंचाने या मार डालने के अनेक प्रयास किए हैं, किंतु वे किसी भौतिक साधन द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते। भगवान किसी भौतिक साधन के द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। अतएव यहाँ पर परे ब्रह्मणी शब्दों का प्रयोग हुआ है। परे ब्रह्मणी, परे ब्रह्मणी का पर ब्रह्म भगवान। और राक्षसगण न तो परमेश्वर को देख सकते हैं न उन्हें छू सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है अनिर्देशे, है ना। तो यद्यपि वे ऊपरी तौर पर यह सोचे कि वे भगवान के दिव्य शरीर पर अपने भौतिक हथियारों से प्रहार कर रहे हैं, इस श्लोक में भगवान को अनिर्देशे कहा गया है, चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, अतः हम उन्हें किसी एक स्थान पर नहीं दे सकते। साथ ही वे अखिलात्मा है, अखिल आत्मा, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि भौतिक हथियारों के भी। देखिए बहुत ही ऐसी गूढ़ बात यहाँ श्रील प्रभुपाद ने कह दी है, जिसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि भौतिक हथियारों के भी, जिन हथियारों से प्रहलाद के ऊपर प्रहार किया जा रहा है उन हथियारों में भी भगवान बैठे हैं, हथियारों में भी भगवान बैठे हैं। जो लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझते वे हतभाग्य हैं, भले ही वे यह सोचें कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उसके भक्त को मार सकते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। भगवान जानते हैं कि उनसे किस प्रकार निपटा जाए। तो यहाँ शिल प्रभुपाद का जो है भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो प्रसंग तो बहुत सुंदर है और समय बहुत कम है, दोनों का तालमेल कैसे बिठाया जाए। समय तो रुकता नहीं है और प्रसंग इतना सुंदर है कि लगता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ समाप्त करें। राखे कृष्ण मारे कैन, मारे कृष्ण। इस सिद्धांत को हम सुनते तो रहते हैं लेकिन उसको हृदयस्थ भी कर लेना चाहिए। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। प्रहलाद महाराज इसका जीता जागता हमारे सामने एक उदाहरण है। किस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो तीनों लोकों का विजेता बन गया और वो एक बालक को नहीं मार पा रहा। योजना तो उसने बनाई थी अमर होने की, ब्रह्मा से वर प्राप्त किया लेकिन पुत्र जो है अमर बन गया। ये देखो, पिता ने पितृ की शरण ली, पिता ने पिता की शरण ली। कैसे? हिरण्यकश्यप कौन थे? प्रहलाद के पिता थे। और ब्रह्मा जी किसके पिता थे? नारद मुनि के पिता थे। लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई और पुत्र ने पुत्र की शरण ली। प्रहलाद पुत्र थे और नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और प्रहलाद क्या हो गए? प्रहलाद अमर हो गए। देखो, प्रहलाद अमर हो गए हैं और हिरण्यकश्यप अमर होने का प्रयास कर रहे हैं। सामने आमने सामने देख सकते हैं आप। तो जब भगवान अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। ये सिद्धांत यहां पर, इसको हमें थोड़ा हमको चर्चा करनी है। जब एक बार इंद्र ने दधीजी की अस्थियों से वज्र जो है उसका निर्माण किया, भगवान के कहे अनुसार के जाओ दधीचि मुनि के पास, अगर वृत्तासुर को मारना चाहते हो तो कोई उपाय नहीं है, जब तक दधीचि मुनि अपनी अस्थियां नहीं देंगे और उसे वज्र का निर्माण आप नहीं करोगे तब तक वृत्तासुर का वध नहीं हो सकता। गए दधीचि मुनि के पास और जाकर के जो है कहा कि हमें आपके अस्थियों की आवश्यकता है, मतलब कि आप मर जाओ, कहने का तात्पर्य यह है। तो मुनि ने जो है अपनी अस्थियां प्रदान की, वज्र बना और उस जिस वज्र से वितासुर का वध किया गया। और जो वितासुर इतना महान पराक्रमी था और इतना विशाल उसकी जो काया थी, और उसी वज्र से इंद्र ने जब अपनी सोती हुई माता दिति के गर्भ में प्रवेश किया है और एक छोटे से भ्रूण को वो उस वज्र से मार नहीं पाए। देखिए, वही वज्र है, वही इंद्र है, कहां उसने वृत्तासुर का वध कर दिया क्योंकि भगवान चाहते थे, और कहां वो गए हैं दिति के गर्भ में। जब आपको कथा प्रसंग मालूम होगा कि किस प्रकार से जो है कश्यप मुनि की जो पत्नी थी दिति, वो इंद्र का वध करना चाहती थी और कश्यप मुनि बड़े दुखी हो गए थे उसकी इस भावना को देख करके, और उसको एक साल के लिए कहा तुम जो है ये व्रत करो, पुंसवन व्रत करो और उससे आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करेगा। तो इंद्र को जब ये बात मालूम हो गई कि दिति के गर्भ में ऐसा जो है पल रहा है, ऐसा पुत्र पल रहा है जो मेरा वध करेगा, तो उसकी हत्या करने के लिए जिस दिन उसके व्रत में कमी आई तो वो उसके मुंह के द्वारा जो है उसके गर्भ में घुस गए हैं और वहाँ पर उन्होंने उसका भ्रूण का जो है वध करने का प्रयास किया है। उसी वज्र से वो सात भागों में विभक्त हो गया, कहने लगे हमें मत मारो, हमें मत मारो। फिर उसके ऊपर प्रहार किया, 7 से 49 हो गए, तो 1 से 49 हो गए। उसके भाई थे वो इंद्र के, तो इस प्रकार से फिर इंद्र ने जो है उनको नहीं मार पाए और उनको लेकर के वो देवलोक चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से जब भगवान की इच्छा नहीं थी तो वो वज्र से भी वो उसका नाश नहीं कर सके। अम्बरीश महाराज की कथा आप सब लोगों को मालूम है, किस प्रकार से दुर्वासा मुनि जो है नहीं बचा पाए अपने आप को, भगवान के सुदर्शन चक्र से अपने आप को नहीं बचा पाए, जब तक के आकर के तीनों लोकों में घूमने के बाद अम्बरीश महाराज के चरणों में आकर के शरण नहीं ले ली, तब तक भगवान ने कहा मैं भी तुम्हारे को क्षमा नहीं कर सकता हूं। जिसके चरणों में तुमने अपराध किया है वहीं जाकर के क्षमा भाओ, अहम भक्त पर अपराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तो इस प्रकार से अनेक प्रसंग है। प्रहलाद महाराज जो है ना वो स्मरण के आचार्य हैं, नवधा भक्ति में स्मरण के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। तो छोटी छोटी झांकियों पे हम भी स्मरण करते चलते हैं, छोटी छोटी झांकियां, विस्तार से तो नहीं जा सकते क्योंकि समय का अभाव है। तो एक प्रसंग तो हमने ये सुना दिति का और इंद्र का, किस प्रकार से वो उनका वध नहीं कर पाए। दूसरा प्रसंग हमने सुना किस प्रकार से जो है अम्बरीश महाराज के चरणों में आकर के जो है दुर्वासा मुनि को आश्रय मिला, अन्यथा भगवान ने भी जो है उनको नहीं क्षमा किया। और तीसरे प्रसंग में एक कथा का श्रवण हम संक्षिप्त रूप में कर सकते हैं, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी के काल में भावानंद राय के जो पुत्र थे, 5 पुत्र थे रामानंद राय के पुत्र, गोपीनाथ पटनायक और वाणीनाथ, तो जब वाणीनाथ जो है और गोपीनाथ पटनायक को चांग पे लटकाया जा रहा था, शूली पे लटकाया जा रहा था, वो कथा लंबी है हम विस्तार में नहीं जाएंगे, और महाप्रभु के पास पहुँचे हैं और कहा है कि भाई ये तो सारा परिवार आपके शरणागत है, महाप्रभु इनकी रक्षा करो, छोटे से दोष के कारण इनको बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। गोपीनाथ पटनायक को उनको चांग पे लटकाने का मतलब नीचे से तलवार रहेगी और उसको लटका दिया जाएगा और उसको खत्म हो जाएगा, और वाणीनाथ और उसके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो महाप्रभु ने बाहर से तो दिखाया कि भाई मेरे को सन्यासी होकर के मेरे को आप इन समस्याओं में उलझा रहे हो, लेकिन साथ साथ महाप्रभु ने कृपा भी दी है और कहा है कि तुम जाओ और जगन्नाथ जी का आश्रय लो। तो स्वयं एक चल जगन्नाथ है, एक अचल जगन्नाथ है। चल जगन्नाथ ने कहा तुम अचल जगन्नाथ के पास जाओ, क्योंकि भगवान तो भक्त के रूप में आए हैं ना, महाप्रभु कैसे कहते कि हाँ मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। अचल जगन्नाथ के पास भेज दिया और इस प्रकार से जो है महाप्रभु ने पूछा उनसे कि भाई जब उनको सजा पे लटकाया जा रहा था तो उस वक्त वाणीनाथ क्या कर रहा था? तो बोले महाप्रभु वाणीनाथ गिनती पूर्वक संख्या पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और जब 1000 संख्या पूरी हो जाती थी नाम जप की, तो वो अपने शरीर के ऊपर एक बहुत तीखे किसी उससे निशान लगा देते थे, शरीर को ही एक तरीके से निशान लगा के उसको काट देते थे 1000 संख्या पूरे होने के बाद। नाम का आश्रय ले लिया, सामने दिखाई दे रहा है कि अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, नाम का आश्रय लेकर के वाणीनाथ जो है पूर्ण रूप से मग्न हो गए। यहां पर प्रहलाद महाराज मग्न हैं भगवान के ध्यान में। और इसी प्रकार से भगवान ने तो सब जगह रक्षा करी, भक्तों की, पांडवों की रक्षा करी, विष से रक्षा करी है, लाक्षाग्रह से रक्षा करी है, द्रौपदी के चीरहरण को बचाया है, अनेक प्रसंग है भगवान ने रक्षा करी है। लेकिन भक्त जो है अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना नहीं करता। प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना नहीं कर रहे भगवान से कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, प्रहलाद महाराज नहीं। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं भगवान, इनको क्षमा कर दो, इसमें इनका कोई दोष नहीं। अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि मेरी रक्षा करो, ये जो मेरे को पीट रहे हैं, ये जो मेरी हत्या करना चाहते हैं, इनको क्षमा कर दो। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी जो स्थिति होती है, वो जिस भाव में स्थित रहते हैं। यहां प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो हथियार हैं वो हथियार भी जो है मानो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हो कि आप जैसा निर्देश देंगे हम वैसा करेंगे। ये हथियारों में भी भगवान के प्राण, भगवान कहते हैं ना मैं भौतिक और आध्यात्मिक सब जगतों का मैं ही स्रोत हूं, तो मैं अध्यक्षेण प्रकृति सोयते सा चराचरम, जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं वो भी तो भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। भौतिक वस्तु भी, ये हथियार भी भगवान की तरफ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जैसा हमको आदेश देंगे तभी हम उस बालक के ऊपर प्रहार करेंगे, अन्यथा इनके द्वारा जो प्रहार किया जाएगा वो निष्फल हो जाएगा। देखिए एक निर्जीव वस्तु भी भगवान की इच्छा से कार्य करती है और सजीव भी भगवान की इच्छा से कार्य करता है, लेकिन कर्ता अहम इति मन्यते, ये कर्ता भाव बहुत खराब है भैया, ये तो बुद्धि खराब कर देता है। क्या ठाकुर की लीला है, थोड़ा सा भी कुछ हम कर लेते हैं तो कर्ता भाव मन में आ जाता। यहां हमको इस बात को समझना है कि चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, केवल ठाकुर की इच्छा से ही वो कार्य संभव है। अगर मैं इस आसन पर बैठा हूं तो ठाकुर की इच्छा से, मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो ठाकुर की इच्छा से, आप कुछ सुन पा रहे हो तो ठाकुर की इच्छा से, आप कुछ खा पा रहे हो तो ठाकुर की इच्छा से, कुछ पी पा रहे हो तो ठाकुर की इच्छा से, कोई कार्य ऐसा नहीं है। हम तो जड़ है ना, जड़ वस्तु भी भगवान की तरफ प्रतीक्षा कर रही है। बताइए ये बहुत सुंदर बात है। इसमें भगवान यहां पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि हर वस्तु के प्राण है, यहां तक कि भौतिक हथियारों के भी। तो जो भौतिक हथियार प्रहार कर रहे हैं और उनको लग नहीं रहे, जो हरिदास ठाकुर के ऊपर प्रहार हो रहा है, हरिदास ठाकुर को नहीं लग रहा, महाप्रभु की पीठ पे कोड़े लग रहे हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। भगवान ने कहा अरे भाई मुझसे बात तो कर लिया कर, कुछ सोच समझ तो लिया कर, बगैर सोचे समझ से प्रतिज्ञा कर लेते हो। अहम भक्त पराधीन का मतलब ये नहीं तुम उसको बांध के ही रख दोगे, लेकिन भगवान भी मजबूर है, क्या करें। सूर्य अस्त हो गया, वध नहीं हो पाया, जयद्रथ सामने आ गया, था के मार रहा है। भगवान ने इशारा कर दिया सूर्यदेव को, जरा थोड़ी देर के लिए आ जाना बाहर। अरे अर्जुन क्या देखता है, जयद्रथ तेरे सामने खड़ा है और सूर्य अस्त नहीं हुआ, उठा बाण और कर दे काम। तो मैं अध्यक्ष न प्रकृति, तो सूर्य भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है, सब कुछ एक एक कण कण में तो भगवान है, अखिलात्मानी भगवान। यहां पर कह रहे हैं अपना कि भगवती अखिलात्मनी, अखिल आत्मा पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा भगवान फैले हुए। भगवान श्री रामचंद्र अगर किसी को मारना चाहते हैं, तिनके को बाण बना दिया और इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे छोड़ दिया, तिनके से ही काम कर दिया, तिनका भी उनकी अध्यक्षता में काम करता। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, 18 दिन हो चुके थे, तो भगवान युद्ध होने के पश्चात सर्वप्रथम जो है पहले सारथी उतरता है, फिर जो है अर्जुन को उतारा जाता था, पहले भगवान उतर। लेकिन उस दिन कहा अर्जुन तुम पहले रथ से नीचे उतर जाओ, तुम पहले रथ को छोड़ दो, और उसके बाद भगवान ने ध्वजा पे, रथ की ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान थे, उनको भी इशारे में कह दिया हनुमान जी आप भी यहां से अंतर ध्यान हो जाइए। वायुपुत्र हैं हनुमान, चले गए अपना आकाश मार्ग से, और जैसे ही भगवान ने रथ को छोड़ा वैसे ही रथ में विस्फोट हो गया। क्यों? भगवान की शक्ति से रुका हुआ था। अरे इतने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब ने उसको पहले ही भस्म कर दिया था रथ को, लेकिन भगवान की शक्ति ने उसको रोक रखा था, कुछ नहीं हो रहा था, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अग्निदेव द्वारा दिया गया जो रथ है वो भी भस्म हो गया है। तो इस प्रकार से तो इस बात को समझना है कि हर कोई कार्य जो भी इस जगत में हो रहा है केवल भगवान की इच्छा मात्र से ही हो सकता है। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण करता हम इतनी मन्यते, ये भाव हमारा कब जाएगा, कैसे जाएगा, इसका प्रयास करते रहना चाहिए। और देखिए प्रहलाद महाराज जो है वो स्मरण के आचार्य हैं, स्मरण के आचार्य, उन्होंने केवल स्मरण के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन स्मरण कब संभव हो सकता है? श्रवण और कीर्तन किए बगैर स्मरण संभव हो ही नहीं सकता। श्रवण, सबसे पहले श्रवण होगा, श्रवण के बाद हम कीर्तन भी करेंगे, जब सुनेंगे तो कीर्तन करेंगे, और श्रवण कीर्तन के होने से जब हमारे हृदय का मार्जन हो जाएगा, चेतो दर्पण जब मार्जन हो जाएगा, जब हमारा हृदय बड़ा स्वच्छ हो जाएगा, तभी तो आकर के भगवान उस हृदय क्षेत्र में आकर के विराजित होंगे, और तभी स्मरण संभव है। जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो जाता तब तक स्मरण संभव नहीं है। और श्रवण और कीर्तन जो है हृदय को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पहले दिन मार्जन करने के लिए भक्तों को ले जाते हैं, तो कहते कौन इसमें से सबसे ज्यादा कचरे को बाहर निकालेगा। जो जितना अधिक कचरे को बाहर निकालते थे महाप्रभु उतने अधिक प्रसन्न हो जाते थे। तो वो कचरा क्या है? वो कचरा हमारे हृदय में ही, हृदय का ही कचरा है, तो वो मार्जन के द्वारा जो है वो हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये जो स्मरण के जो आचार्य हैं, तो जब अब देखो भगवद गीता में भगवान ने लगातार 3 श्लोकों का गायन किया है जो स्मरण से संबंधित है, 8वें अध्याय का पांचवा, छठा, सातवां कौन कौन से हैं? अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। पहले ही श्लोक में आठवें में यह आया है कि अंत काले च मामेवा, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, याद रखिए, मेरा स्मरण करते हुए। भगवान ने यह नहीं कहा कि अंत काल में जो मेरा कीर्तन करते हुए शरीर को छोड़ेगा या मेरा श्रवण करते हुए शरीर को छोड़ेगा। भगवान बड़ी व्यवहारिक बात करते हैं, अव्यवहारिक बात भगवान नहीं करते, क्योंकि अंत काल में ना तो कीर्तन कर सकते हैं और ना श्रवण कर सकते हैं, लेकिन स्मरण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं स्मरण? क्योंकि स्मरण जो है सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है, स्थूल शरीर के द्वारा नहीं होता। ये जो मन बुद्धि अहंकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसके द्वारा स्मरण होता है और ये हमेशा एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता। बाहर से हमको लगता है जब व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है बिल्कुल अचेत पड़ा हुआ है, कुछ सुन नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसका जो अंतःकरण है वो पूर्ण रूप से जागृत है और उसी में स्मरण हो सकता है। वही स्मरण होगा जो आपने श्रवण किया है और वही स्मरण होगा जो आपने कीर्तन किया। इसीलिए भगवान ने कहा अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति तत् संशयः। इसमें कोई संशय मत समझना, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है। तो ये प्रहलाद महाराज उसी स्मरण के आचार्य हैं। उसके बाद में भगवान आठवें उसमें कहते हैं, छठे श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करता है कोई, तजन्ते अन्ते कलेवरम, तजन्ति अन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, तम तम एवेति कौन्तेय हे कुंती पुत्र, उस भाव को निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है, सदा तद भाव भाविता। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर स्मरण की बात कर दी और उसके अगले श्लोक में भी भगवान ने श्लोक स्मरण की बात कर दी। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसीलिए इस संसार में अपने सारे कार्यों को करते हुए मेरा स्मरण करते हुए अपने सारे कार्य करो। याद रखिए, अपने कार्य करते हुए स्मरण नहीं करना, भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करना है। दोनों में बहुत अंतर है। भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करना या कार्य करते हुए स्मरण करना, इसमें बहुत अंतर है। स्मरण करना है कार्य हो ना हो, कार्य आपका परिणाम दे या न दे, स्मरण करना है। तो इस प्रकार से तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर् मा वेष्यसि असंशया, आप निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान को हम जब हृदय में बिठा लेते हैं तो फिर हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि, सारे जीवन के जो अवरोध हैं, जितने भी जीवन के जितनी भी कठिनाइयां हैं, मेरे में अगर आप चित लगाओगे, सर्वदुर्गाणी सारे जीवन के कष्ट, सारे अवरोध वो आपके दूर हो जाएंगे। मत चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से आप पार कर जाओगे, सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। और नहीं तो क्या होगा? अथ चेतुम अहंकारं न श्वससि विनश्यसि, अगर अहंकार से पूर्ण होकर के आप मेरी बात को नहीं सुनोगे तो विनश्यति विनाश हो जाएगा। तो महाप्रभु ने भी जब मिलते थे ना, आशीर्वाद देते थे, तो क्या आशीर्वाद देते थे सबको? हाँ, महाप्रभु कहते थे कृष्णेर चरणे रतिर मतिर अस्तु, बहुत ऊंची बात है, कृष्णेर चरणे रतिर मतिर अस्तु। रति जो है वो कामदेव की पत्नी का नाम है। जैसे कामदेव अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हैं, ऐसे ही आपकी जो मति है कृष्ण के चरणों में हो जाए। कृष्णेर चरणेर रतिर मतिर अस्तु। तो हमारी मति भगवान के चरणों में लग जाए और हमारी वो स्थिति हो जाए कि हम श्रवण कीर्तन करते 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 हमको हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम भी भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान का स्मरण कर सकें। तो इस प्रकार से यही आज के श्लोक का जो है अभिप्राय था और इसको हमने यहाँ पर समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी हो, आपका स्वागत है। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।